तुम आ गए बेटा।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। देखो सुरुष, क्यों खुद को और मुझे इतनी अजियत दे रहे हो? तुम्हें इस हालत में खुद को इतना थकाना नहीं चाहिए।
अजीब दिन था आज, आप यकीन नहीं करेंगे।
तुम बताओ क्यों नहीं, मैं यकीन कर लूंगी। मस्जिद गए थे, वो बुजुर्ग मिले?
हाँ वही थे, तकवी मरहूम, वही मेहरबान आंखें। उनकी तस्वीर देख रहा था तो उनकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही, जैसे सदियों से उन्हें जानता हूँ।
अच्छा।
जिस हॉस्पिटल में वो एडमिट थे उसका एड्रेस मैंने उनके बेटे से लिया। हॉस्पिटल में उनमें से दो अफराद और भी मिल गए। सबसे अहम बात क्या है पता है आपको? हम सब लोग एक ही दिन कोमे में गए थे।
और वो दोनों अफराद कौन है?
उनमें से एक आदमी जिसे मैंने हॉस्पिटल में देखा, उसका नाम आलमी है, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। गालिबन दौरान क्लास उसने कुछ ऐसी बातें की जिसके बायस एक तालिबे इल्म अपना ईमान गंवा बैठा।
अच्छा, अब उनके लिए क्या कर सकते हो?
पता नहीं।
कितनी अजीब बात है कि इंसान जब तक जिंदा होता उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है, और जब मर जाता है तब समझने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है।
दूसरा शख्स जिसको हॉस्पिटल में देखा वो एक लड़का है, जिसने अपनी माँ को सेनेटोरियम में इसलिए भेज दिया ताकि वो अपनी माँ के घर को भेज सके।
तुम तो उनके तमाम राजों से वाकिफ हो, ऐसे में अगर तुमने उन्हें कॉल ना दिया तब भी तुम्हारा फर्ज बनता है कि उनके तमाम मुतालिकीन से उनके हकूक पक्षवाओ। कैसा अजीब वाकया है।
आप जानती हैं जो बात मेरे लिए सबसे ज्यादा परेशान कुन है वो ये है कि उन तमाम लोगों में मैं सबसे ज्यादा गुनाहगार था। अब मुझे चाहिए कि मैं इस मोहलत को गनीमत जानूं। मुझे परवाना और नीमा को ढूंढना होगा।
जब तुम होश में आ रहे थे तो किसी बहनोश नामी लड़की का नाम पुकार रहे थे, क्या वो रूह है?
बहनोश? हाँ, एक लड़की है जिसने शादी की रात खुदकुशी कर ली थी। गालिबन अपनी सौतेली माँ के साथ उसका रवैया अच्छा नहीं था।
खुदकुशी?
हाँ।
कहाँ जा रहे?
शहर में जा रहा हूँ जरा हवा खाने।
Thank you. आज माह रमजान का पहला रोजा है। तुम रोजा तो नहीं रख सकते, लेकिन आओ दुआ कर लो, अपने लिए भी और उनके लिए भी जिन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है।
السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
कहाँ है? मामा, मामा।
हाँ बेटा, क्या हुआ?
आपने मेरी चीजों को इधर उधर किया है?
नहीं, क्यों, क्या हुआ?
मैंने कंपनी के कुछ अहम डॉक्यूमेंट्स यहाँ अंदर रखे थे, अब वो यहाँ पर मौजूद नहीं।
तुम्हें यकीन है?
हाँ मुझे यकीन है। किसी ने मेरी चीजों को हाथ तो नहीं लगाया था?
नहीं तो, बस दो हफ्ते पहले मसूद ने मुझसे चाबी ली थी कि तुम्हारे इंश्योरेंस बुक चाहिए, कह रहा था कि हॉस्पिटल में जमा करानी है।
मसूद ने?
हाँ।
हेलो।
हेलो मसूद।
हाँ बोलो।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? सुनो, मैं जिन पेशेंट्स का नाम बता रहा हूँ उन्हें नोट कर लो,
आज शाम तक तुम्हें उन सबको ढूंढ निकालना है।
लेकिन मुझे फिलहाल ऑफिस में बहुत काम है।
मेरा काम ज्यादा अहम है मसूद साहब।
आखिर देखो, मैं हॉस्पिटल में इतने सारे मरीजों में उन्हें किस तरह से ढूंढूंगा?
सुनो, जिस दिन मैं कोमा में गया था ये सब भी उस दिन कोमा में गए थे। समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? बस तुम्हें तमाम हॉस्पिटल की खाक छाननी पड़ेगी, वो सब शायद अभी भी कोमा में।
अच्छा भाई।
अच्छा तो नोट करो, मोहतरमा बहनोज शफी,
लिख लिया, इंजीनियर सईद तैमान,
और मोहतरमा सुरैया हिकमत साहिबा।
बाय द वे मसूद, क्या मेरी इंश्योरेंस बुक तुम्हारे पास है?
हाँ, शायद मेरे पास। हॉस्पिटल में जमा करवानी थी।
हॉस्पिटल में जमा करवानी थी? और कंपनी की डॉक्यूमेंट्स
क्या वो भी हॉस्पिटल में जमा करवानी थी?
हाँ, मतलब नहीं। अच्छा, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा।
चलो ठीक है, तुम मुझे बाद में बता देना। ओके,
कोई काम तो नहीं? खुदा हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम।
ये तुम कहां से टपक पड़े? तुम्हें किसने अंदर आने दिया?
आराम से बैठ जाओ बॉस, ज्यादा गुस्से की जरूरत नहीं है, सब लोग देख रहे हैं।
मैंने तुमसे कहा था ना कि इधर का रुख मत करना।
हाँ याद है, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि मैं ही हमेशा आपकी बात मानूं। आज के बाद आपको हमारी बातें माननी पड़ेंगी। चलो अब इंसान के बच्चे बनो और बैठ जाओ। मुझे मेरे पैसे चाहिए।
कैसे पैसे? जो काम नहीं किया उसके पैसे? मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ, तुम अभी जाओ और मेरे कागजात वापस कर दो।
मैंने तो सारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे नाम कर दिए थे, अब अगर एक मुर्दा जिंदा हो गया।
तुम्हारा कितना मुंह भरूं कि फिर तुम दिखाई मत दो।
ज़बान संभाल के बात करो।
मेरे साथ ऐसा मत करो।
जैसा करोगे वैसा भरोगे, वरना बंदा तो नौकर है।
मैंने कहा कितना दूं तुम्हें?
देखो, मेरी कीमत मुर्गी की गोश के भाव तो नहीं है जो बढ़ते और घटते रहेंगे। 50 लाख बिना किसी कमी के।
मेरे पास इतने पैसे नहीं है, बस 10 लाख ले लो, और अगर ज्यादा तंग किया तो मैं सरोज को बता दूंगा कि मेरे डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए थे और मेरे पास ऐनी शायरी भी मौजूद।
सरोज, सरोज मुझे अच्छी तरह जानता है। अगर वो डॉक्यूमेंट्स जो मैंने तुम्हारे नाम मुंतकिल किए थे उसे दिखा दूं तो समझ जाएगा कि असल मामला क्या है। अभी तो मैं 10 लाख ले रहा हूँ, बाकी रकम अगले माह कर लूंगा। ये रियायत भी सिर्फ तुम्हारे लिए मेरे दोस्त। मेरी तजवीज पर अच्छी तरह गौर करना, क्योंकि मैं ज्यादा सब्र नहीं कर सकता।
ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो।
कौन अच्छा कर रहा है और कौन बुरा ये छोड़ो, चलता हूँ।
कौन है?
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
ये नजफियान साहिबा का घर है ना?
जी नहीं, यहाँ कोई नजफियान नहीं होती।
तो क्या वो यहाँ नहीं रहती
हैं? उन्हें गए तो 2 साल हो गए हैं, अब यहाँ रहमान साहब रहते हैं।
आपको मालूम है कि वो कहाँ गई हैं?
भला मुझे कैसे मालूम होगा, जब हम यहाँ आए थे तो ये घर खाली था, हमने उनको देखा तक नहीं। आप कौन है?
मैं उनका शौहर हूँ।
तो अब तक कहाँ थे? अब याद आया कि तुम्हारी कोई बीवी भी थी, कहीं तुम जेल में तो नहीं थे?
शुक्रिया, माफी चाहता हूँ कि आपको जहमत दी।
कहाँ चले, जरा रुको, मशकूक मालूम होते हो। अगर सच कह रहे हो तो रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ।
खुदा आपको जज़ा दे, खुदा हाफिज।
कौन था, क्या हुआ?
वल्लाह पता नहीं, उस चोर की शक्ल का था जो उस रात आया था।
हामिद का कह रही है।
माफ कीजिएगा जनाब, जरा सुनिएगा।
जी फरमाइए।
यही अमीन मिल है ना?
उसे तो 6 माह हुआ यहाँ से मुंतकिल हुए।
आप नजफियान साहिबा को जानते हैं?
नजफियान साहिबा? हाँ वही, शायद जिनका एक बेटा भी है।
जी जी वही।
उन्हें तो 1 साल हो गया ऐसे जॉब छोड़े हुए।
बहुत शुक्रिया जनाब।
कोई बात।
हाँ क्या खबर है? ठीक है तुम वहीं ठहरो, मैं अभी आता हूं।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हैं?
आओ यहाँ पर है। यही है ना?
हाँ ये तो वही है, बिल्कुल वही है जिन्हें मैंने कोमे के दौरान देखा था।
अब क्या करना चाहते हो?
पता नहीं, चलो चलकर देखते हैं, उनका कोई अजीज रिश्तेदार उनमें से कोई तो यहां होगा। माफ कीजिएगा जनाब, आप मोहतरमा शफी या मोहतरमा हिकमत या जनाब ऐमान में से किसी को जानते हैं?
मैं होशंग हूं, मोहतरमा हिकमत साहिबा का बेटा।
जी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, अगर मुमकिन हो तो आपके चंद मिनट लेना चाहूँगा।
जी जी क्यों नहीं, फरमाइए।
वो दरअसल मैं भी आपकी वालिदा की तरह पिछले दिनों कोमा में था।
जी जी।
उस दौरान मेरी मुलाकात आपकी वालिदा से हुई। देखिए आपसे हकीकत बयान कर रहा हूँ कि आपकी वालिदा अजाब में है। आपकी माँ उन लोगों से माफी की तलबगार है कि जिनके साथ उन्होंने किसी न किसी तौर से बुराई की या उन्हें ज़हनी अज़ियत पहुंचाई।
मेरी माँ फरिश्ता सिफ़त थी, बिल्कुल मासूम, सादा लो।
जनाब आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? आप जो कुछ भी कह रहे हैं हमें इस पर बिल्कुल यकीन नहीं है।
वो मुजस्सम खैर थी, उनकी आकबत भी बखैर होगी।
सही, लेकिन ये आप जानते हैं वो लोग नहीं कि जिनकी जिंदगियों का शिराजा बिखर गया। बेहतर है कि आप लोग उन लोगों को कि जिन्होंने अपनी बदबख्ती और गिरफ्तारी से निजात के लिए आपकी माँ से सूद पर कर्जा लिया था तलाश करें और अपनी वालदा को बख्श देने पर उन्हें राजी करें।
ये तुम क्या कह रहे हो? ये सब क्या बकवास है? क्या ऑल फॉल बक रहे हो? जरा मुंह संभाल कर बात करो। तुम मेरी माँ के बारे में जानते भी हो? जानते हो उनकी क्या खिदमत है? चलो जाओ यहाँ से। कुछ पता भी है कितने लोगों को उन्होंने कर्ज देकर उनकी जिंदगियां सवार दी हैं? कुछ अंदाजा है तुम्हें?
नहीं जनाब, कर्ज नहीं, सूद पर कर्जा देना।
अपनी जबान को लगाम दो, तमीज से बात करो।
आहिस्ता जनाब, आहिस्ता।
यकीनन तुम नहीं चाहोगे कि सब जाने कि तुम्हारी माँ ने कितने लोगों को बर्बाद किया है।
शर्म करो,
मैं तो यहाँ तक जानता हूँ कि सूद पर कर्जा कितने लोगों को और किस मद में दिया। ठंडे दिमाग से सोचो। माफ कीजिएगा जनाब, आप मोहतरमा शफी या इंजीनियर पैमान के अजीजों में से तो नहीं?
जी नहीं, हम इन्हें नहीं जानते।
माफ कीजिएगा, आप पैमान साहब या शफी साहिबा के अजीजों को जानते हैं? वो आईसीयू
में? नहीं, मैं नहीं जानता।
मुलाकात का वक्त खत्म हो गया जनाब, अब आप तशरीफ ले जाइए।
माज़रत चाहता हूँ।
ये क्या कह रहे थे?
ठहरो।
ठहरिए जनाब, जरा सुनिएगा।
तुम्हें बुला रहा है।
आप इंटेलिजेंस वाले हैं?
मैं ना तो पुलिस वाला हूँ, ना इनकम टैक्स ऑफिसर, ना सूद खोर हूँ और ना ही आपकी वालिदा को जानता हूँ। वही हूँ जैसा अर्ज किया।
तो फिर तमाम मालूमात कहाँ से हासिल की? नजुमी हो, ज्योतिषी हो।
मुझे बहुत अफसोस है, वैसे तुमने कितना पढ़ा है?
तुम्हें इससे मतलब? देखिए जनाब, इस वक्त ज़हनी तौर पर हमारी हालत कुछ ठीक नहीं है।
मुझे अंदाजा है, लेकिन इनकी वालिदा की हालत हम सबसे कहीं ज्यादा बदतर है। आखिर तुम समझते क्यों नहीं बंदा खुदा, मैं तो तुम्हारी माँ को इस अजाब से निजात दिलाना चाहता हूँ।
वो किस तरह?
तुम्हारे तावुन से। हाँ, आप लोग बस इतना करें कि उन तमाम लोगों को जिन्हें रकम दी गई थी उन्हें कॉल करें और जो कुछ बतौर सूद उनसे हासिल किया था वो उन्हें वापस कर दें, जैसे बैंक के चेक या जायदाद के कागजात वगैरह।
अच्छा, तो अब मैं समझा उनके कस्टमर में से एक
हूँ,
मनगढ़ंत किस्सों से उनका माल हथियाना चाहते हो? मैं नहीं होने दूंगा मिस्टर, मैं नहीं होने दूंगा।
गिरवान छोड़ो मेरा, मैंने एक पैसा भी ना तो तुम्हारी माँ से लिया है और ना ही मुझे लेना है। मेरा नाम सरोज करामती है। तुम बैंक के तमाम चेक्स और अकाउंट के रजिस्टर चेक कर सकते हो, मेरा नाम तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा।
हाँ, नजुमी हो।
अस्तग़फ़िरुल्लाह।
या फिर कोई इल्हाम होता है? हाँ?
दिमाग तो ठीक है तुम्हारा।
छोड़ो भी, शायद यही चाहता है कि इसकी माँ अजाब झेलती रहे तो हमारी बला से। सुने जनाब, ये मेरा कार्ड है, दिल चाहे तो हमसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
हमारे पेशेंट की हालत अब कैसी है हिकमत साहब?
कोई खास नहीं, वैसी है जैसी थी। ये इंजीनियर पैमान के मिसेज हैं, यही हॉस्पिटल में इनसे मुलाकात हुई थी।
अस्सलाम वालेकुम।
आप डॉक्टर हैं?
जी नहीं मोहतरमा,
ये नजूमी हैं। ये माजी का बताते हैं और मुस्तकबिल से आगाह करते हैं।
छोड़ो भी, मुझमें मजीद हौसला नहीं, लोगों को भी यही वक्त मिला था ऐसा मजाक करने का। चलो चलें।
बहुत शुक्रिया।
देखिए मोहतरमा, आपके हस्बैंड जावेद नामी शख्स के दोस्त हैं। उन दोनों ने कुछ अर्सा कबल एक जमीन जो कि दो यतीम मासूम बच्चों की मलकियत थी हत्या ली है। بہت غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے کہ انسان یتیم بچوں کا حق مارے۔
آپ کون ہیں؟
نہ تو میں فائلگیر ہوں، نہ نجومی، اور نہ ہی مجھ پر الہام ہوتا ہے۔ میرا یہ دوست گواہ ہے، اور ہاسپٹل کے ریکارڈ کے مطابق کچھ دنوں پہلے تک میں بھی کوما کی کیفیت میں تھا، آپ کے ہسبینڈ کی طرح۔ میں نے، آپ کے ہسبینڈ اور چند اور افراد نے آپس میں قسم کھائی تھی کہ اگر جب بھی ہم میں سے جس کسی کو بھی اس دنیا میں واپس آنے کا موقع ملا تو وہ باقی ایمان دار ارواحوں کو بخشوانے کے لیے تک و دو کرے گا۔ اور اب آپ اسے میری خوش قسمتی کہیں یا بدقسمتی کہ فی الحال میں وہ واحد شخص ہوں کہ جو ہوش میں آیا ہوں، لہٰذا کیے گئے وعدے کے مطابق مجھے عذاب میں مبتلا باقی تمام ارواحوں کو بخشوانا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو میں نے آپ کو بتائی۔
دیکھیے جناب، آپ چاہے جو کوئی بھی ہیں، میرے ہسبینڈ کا دامن بے داغ ہے اور انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا جو انہیں کسی کی مدد یا کسی وکیل وغیرہ کی ضرورت پڑے، اور بالفرض اگر انہیں کسی سے معافی مانگنی پڑی بھی تو انشاءاللہ جب وہ صحت یاب ہو جائیں گے تو یہ کام وہ خود ہی کر لیں گے۔ بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔
اب چلیں۔
عجیب زمانہ آ گیا ہے۔
اچھا تو فی الحال خدا حافظ،
میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔
شکریہ، میں اپنی گاڑی کمپنی کی پارکنگ میں پارک کر کے آیا ہوں۔
تم نے آئی سی یو کی نرس کو کانٹیکٹ نمبر دے دیا تاکہ اگر انہیں کوئی خبر ملے تو وہ ہمیں فون کر دیں؟
ہاں دے دی۔
اب تمہیں یقین آیا کہ میں نے کیا دیکھا اور کیا کیا برداشت کیا؟
بہت زیادہ، لیکن کیا فائدہ، انہیں تو یقین ہی نہیں آ رہا۔
انہیں یقین آئے گا بھی نہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی دولت ہتھیانے کے لیے باتیں کر رہے ہیں، نہ کہ خدا کی خاطر۔
ہاں اب صرف وہ لڑکی رہ گئی ہے۔
ہاں، اور اس بیچاری کی حالت بھی کچھ ٹھیک نہیں۔ اب ہمیں کل صبح سے اس کام کے لیے نکلنا ہوگا۔ تمہیں کیا ہوا؟ کن سوچوں میں ہو؟
نہیں، میں ٹھیک۔
مجھے بتاؤ، خیریت تو ہے نا؟ کہیں آفس میں تو کوئی مسئلہ نہیں؟
نہیں، کچھ نہیں، بس ذرا سا تھک گیا ہوں۔
بہرحال تم اپنے اس دوست فرامر سے ذرا محتاط رہنا، بہت خطرناک آدمی ہے، اب تک کئی بار جیل جا چکا ہے۔
وہ اصل میں میرے ایک دوست نے اس سے ایک کام کروایا تھا اور میں نے اس کی ضمانت دے دی تھی، پیسے لینے کے لیے میرے گلے پڑ گیا ہے، میری تو جان عذاب میں ہے۔
اگر وہ گلے پڑ ہی گیا ہے تو اس کو اس کے پیسے دے کر اپنی جان چھوڑا۔ مجھے اس قسم کے لوگوں کا دفتر میں آنا جانا بالکل پسند نہیں۔
ٹھیک ہے، ضرور۔
بہرحال تمہارا شکریہ کہ تم آئے۔
میں نے کچھ نہیں کیا، آخرکار ہم بھی انسان ہیں یار۔
اپنا خیال رکھنا۔
شکریہ، خدا
خدا حافظ۔ جی، ہاسپٹل سے؟ آپ مس شفیع، بہنوز شفیع؟ ایکسکیوز می سسٹر، شفیع صاحبہ کے لواحقین؟
جی، آئی سی یو کے سامنے کھڑے ہیں۔
شکریہ۔
کوئی بات نہیں۔
السلام علیکم۔ معاف کیجیے گا، آپ کا مس شفیع سے کیا تعلق ہے؟
تم کو اس سے مطلب؟ بلکہ سوال یہ ہے کہ تمہارا میری منگیتر سے کیا تعلق ہے جو تم نے پیغام دیا تھا؟ ہاں تمہارا بہنوں سے کیا تعلق ہے؟ کہیں تم بھی اس سے شادی کے خواہش مند تو نہیں؟
نہیں مسٹر، بالکل بھی ایسا نہیں۔ میرا ان صاحبہ سے جو اس وقت ہاسپٹل کے بیڈ پہ پڑی ہیں کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا فقط ان سے روحانی تعلق ہے، یعنی تھا۔ مجھے بتایا کہ آپ یقین نہیں کریں گے، لیکن میری یہ گزارش ہے کہ آپ یقین کریں۔ میں خود بھی چند روز پہلے تک کوما میں تھا، تب عالم ارواح میں میری ملاقات چند ارواحوں سے ہوئی، جن میں سے ایک آپ کی منگیتر بھی تھی۔ آپ کی منگیتر نے شادی کی رات خودکشی کی تھی، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے نا؟
آپ نے واقعی میں اسے دیکھا تھا؟
آپ ان کی سوتیلی ماں ہیں؟
جی۔
انہوں نے چونکہ آپ کو کافی تنگ کیا تھا، افسوس کہ اسی وجہ سے ان کی روح عذاب سے دوچار ہے۔
میرے بارے میں اس نے کچھ نہیں کہا، یہ نہیں بتایا کہ میرے ساتھ اس نے ایسا کیوں کیا، یہ نہیں بتایا کہ ان شادی کی رات ہماری عزت کیوں خاک میں ملا دی۔
تایا یا نہیں بتایا، تایا یا نہیں۔
بھائی ہوش میں تو ہو؟ اندازہ ہے اگر ابھی ٹکر ہو جاتی تو کیا تم مجھے جیل بھیجوانا چاہتے ہو؟
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام، تم آ گئے؟
ہاں،
میں نے سوچا افطار گھر پر کرو گے،
ٹائم نہیں ملا۔
اور سناؤ کیا خیر خبر ہے؟
وہ سب مل گئے ماما، مگر بس کے کام بہت مشکل ہے، کوئی بھی میری بات کا یقین نہیں کر رہا۔ سب سمجھ رہے ہیں کہ یا تو میں نجومی ہوں، یا مستقبل کا حال بتانے والا، یا پھر پولیس والا جو انہیں پکڑنے آیا ہوں، یا کیا جانوں میں، یا شاید انہیں ٹھگنا، یا ان کے مال و اسباب کو ہتیانا چاہتا ہوں۔ خلاصہ یہ کہ میں بہت تھک گیا ہوں۔ میں تو بھر پایا، بھلا مجھے سے کیا کہ ان کے عزیز و قارب میری باتوں پر یقین کرتے ہیں یا نہیں۔ میری بلا سے
کیا مطلب؟ اتنی جلدی نا امید ہو گئے؟
نہیں، نا امید نہیں ہوا ہوں، تھک گیا۔
جس کام کو شروع کیا ہے اسے پایہ تکمیل تک پہنچاؤ۔ حضرت یونس جو خدا کے پیغمبر تھے، جب انہوں نے اپنی قوم کو بد دعا دی اور کہا یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، یہ سدھرنے والی نہیں، جانتے ہو پھر کیا ہوا؟ عذاب خود انہی پر ہوا۔
او ماما، وہ حضرت پوش خدا کے پیغمبر تھے، ان کا مجھ سے کیا مقابلہ؟
اچھا ٹھیک ہے، ہمت مت ہارو اور کھانا کھاؤ جلدی سے۔
کیسا کھانا؟
اچھا تم جانا نہیں، میں لے کر آتی ہوں، لیکن تمہیں مجھے شروع کرنے سے پہلے بتانا ہوگا کہ کیا ہوا۔
दिया था।